ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। दो दिन के सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को उजागर करना और वैश्विक तथा घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। पूर्वोत्तर में निवेश के लिए पर्यटन, आतिथ्य, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, हथकरघा, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, मनोरंजन और खेल को प्रमुख क्षेत्र माना गया है। दो दिन के सम्मेलन के साथ ही पहले से चल रहे रोड शो, गोलमेज बैठकें और राज्य सरकारों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राजदूतों की बैठक भी संपन्न हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के माध्यम से छद्म युद्ध का सहारा लेता है क्योंकि वह भारत से सीधे युद्ध नहीं जीत सकता। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। राजस्थान के बीकानेर में कल एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को खुली छूट दी थी जिससे पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बीकानेर के पलाना में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने 18 राज्यों के 86 जिलों के 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन से राज्यों में पर्यटन का विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे।
जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय झा की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल ने कल जापान की राजधानी टोक्यो में विदेश मंत्री ताकेशी वाया से मुलाकात कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जापान के समर्थन का अनुरोध किया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में दूसरा संसदीय प्रतिनिधिमंडल कल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात संघीय राष्ट्रीय परिषद के रक्षा मामलों, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष अली राशिद अल नूमी और अन्य सदस्यों के साथ व्यापक चर्चा की। वहीं डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में तीसरा प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की यात्रा पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ये आरोप पत्र 2019 में किरू जल विद्युत परियोजना के लिए 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्यों के ठेके में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरोप पत्र में मलिक और 5 अन्य को आरोपी बताया गया है। दिव्यांगजनों को अब केंद्र सरकार के आवास आवंटन में 4% का आरक्षण मिलेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रिजर्व बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना व्यक्त की है। रिजर्व बैंक ने ताजा बुलेटिन के अनुसार औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि, वित्तीय बाजार में सुधार और रबी की अच्छी फसल तथा अनुकूल मानसून पूर्वानुमानों के कारण कृषि की स्थिति आशाजनक रहने का अनुमान बताया है। इसराइल द्वारा 11 सप्ताह से चली आ रही नाकाबंदी में ढील दिए जाने के 3 दिन बाद गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र की टीमों ने मानवीय सहायता वाले 90 से अधिक ट्रक एकत्र किए हैं। इनमें आटा, शिशु आहार और चिकित्सा उपकरण जैसी सहायता शामिल है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटन्स को 33 रनों से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।